अक्षय ताज़ा होकर कपड़े बदल चुका था। अपने कैजुअल कपड़ों में आकर उसे आराम मिला। कुछ देर बाद सुमित को खाने के लिए बुलाया गया। अक्षय का खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। 3 दिनों बाद घर का बना सादा खाना देखकर उसे इतनी खुशी हुई जितनी शायद कभी 56 भोग देखकर भी ना हुई होती। वो दाल चावल रोटी सब्जी खाने को तरस गया था। अभी उसने पहला निवाला ही तोड़ा था कि जहन में आहाना का ख्याल आया और उसने हाथ में लिया निवाला वापस थाली में रख दिया। टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाकर उसने पहले फलक को फ़ोन लगाया, पर जब उसने कॉल रिसीव नहीं की तो सीधे अन्वय का फ़ोन बजा दिया। कुछ रिंग्स के बाद ही कॉल पिक हो गई। हेलो भाई।
हेलो अन्वय, आहाना कहाँ है? उन्हें खाना दिया किसी ने?
पता नहीं भाई, मैं तो बाहर आया हुआ हूँ। आप फलक दी को फ़ोन करके पूछ लीजिए।
वो फ़ोन नहीं उठा रही, अक्षय ने कुछ परेशान लहजे में कहा। पल भर ठहरने के बाद उसने आगे कहा, तुम बाहर कहाँ हो?
बस वाले का हिसाब क्लियर करने आया था, अभी रस्ते में हूँ, घर लौटकर दी से पूछता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अक्षय ने हामी भरते हुए फ़ोन काट दिया। आखिर इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसके पास। बाहर जाकर फलक को ढूंढकर उससे ये पूछने का मतलब था कि मुसीबत को खुद अपने पास बुलाना। किसी को कानो कान भी खबर होती तो जंगल में लगी आग जैसे बात हर जगह फैल जाती। दी, भाभी को खाना दिया? अन्वय घर पहुंचते ही फलक को ढूंढते हुए रसोई में आ पहुंचा और सीधे ही काम की बात छेड़ दी। उसके अचानक यहाँ आने पर फलक पहले तो कुछ चौंक गई, फिर उसका सवाल सुनकर परेशान सी बोली, अभी कहाँ दिया है? देख नहीं रहे हो सब कैसे एक साथ खाने पर टूट पड़े हैं? पर कोई उठकर खुद से खाना लेने को भी तैयार नहीं है। अपने अपने सिंहासन पर बैठे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। यहाँ से फुर्सत मिले तब तो वहाँ जाऊँ। भैया पूछ रहे थे भाभी के बारे में। ये सब छोड़कर पहले भाभी के लिए खाना निकाल दीजिए, मैं दे आता हूँ, या आप दे आइए, मैं यहाँ हूँ तब तक। रस्ते में भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अन्वय के सुझाव को स्वीकारते हुए फलक ने उसे वहीं रहने को कहा और खुद आहाना के लिए खाना निकालने लगी। वैसे तो उसे खाना लेकर भेजने में भी कोई हर्ज नहीं था, पर वो एक लड़का था, ऐसे नई दुल्हन के पास जाता तो शायद यहाँ मौजूद औरतों को उनके रिश्ते में खोट नजर आने लगती, इसलिए फलक ने खुद जाने का फैसला किया। आहाना संकोच के कारण अब तक वैसे ही बैठी थी, जबकि थकान से उसका बदन टूट रहा था। हाँ, इस दौरान उसने घर पर बात जरूर कर ली थी और अब दोनों पैरों को समेटकर सीने पर बांधे, घुटने पर थोड़ी टिकाए, मुंह लटकाए उदासी बैठी हुई थी। भाभी, आप अब तक ऐसे ही बैठी हैं? फलक ने कमरे में कदम रखते ही सवाल किया। उसे अंदर आते देखकर आहाना ठीक से बैठ गई, पर कुछ नहीं कहा। फलक ने खाने की ट्रे टेबल पर रख दी, फिर आहाना की ओर पलटते हुए बोली, भाभी ये लीजिए आपका डिनर, इसके बाद कोई रस्म नहीं है, तो कपड़े बदलकर फ्रेश होकर डिनर कीजिए और फिर आराम कर लीजिए। हमारा बैग नहीं है, कपड़े तो उसी में हैं। आहाना को झिझकते देखकर फलक मुस्कुरा उठी। शायद नई जगह और नए लोगों के बीच घबरा रही थी और इस फीलिंग्स को वो बखूबी समझ रही थी। मैं अभी अन्वय को आपका सामान लेकर भेजती हूँ। कुछ ही देर बाद अन्वय उसके बैग लेकर हाजिर हो चुका था। आहाना ने सारे गहने उतार कर रखे और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी कि बेड पर रखा उसका फ़ोन बज उठा। जाकर फ़ोन चेक किया तो स्क्रीन पर अक्षय का नाम चमक रहा था। हेलो, आहाना की मीठी सी आवाज़ अक्षय के कानों में घुल गई। हेलो आहाना, खाना खाया आपने? उसकी आवाज़ में झलकती फिक्र को महसूस करते हुए आहाना के लबों पर मनस्मित सज गई। नहीं, अभी कपड़े बदलने जा रहे थे, फ्रेश हो लें फिर खाएंगे। खाना आ गया आपका? अक्षय ने अगला सवाल किया, जिस पर आहाना ने सहमति में सिर हिलाया। जी, फलक कुछ देर पहले दे गई थी। ये सुनकर अक्षय ने राहत की सांस ली। ओके, तो जल्दी से फ्रेश होकर डिनर कीजिए और सो जाइए। कल रात भी नहीं सोई थी और आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। कल सुबह भी जल्दी उठना होगा, तो अगर जल्दी सो जाएंगी तो शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। जी, आहाना ने किसी आज्ञाकारी बच्चे जैसे सहमति में सिर हिलाया। और अगर कोई परेशानी हो या तबीयत खराब लगे तो बिना हिचकिचाए तुरंत मुझे फ़ोन कीजिएगा। जी, आहाना ने एक बार फिर हामी भर दी। कुछ पल की खामोशी के बाद अक्षय की ठहरी हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। आहाना? फ़ोन कान पर लगाए खड़ी आहाना ने तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया। जी, वो मुझे कुछ और भी कहना था। इस बार अक्षय झिझक रहा था जबकि आहाना सामान्य थी। जी, कहिए। आहाना, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ इस रिश्ते और हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, शहर सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हैं। आप यहाँ किसी को ठीक से जानती नहीं हैं। ये जगह आपके लिए अनजान है, तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगी। आपको अजीब लग रहा होगा, अपने घर की याद आ रही होगी, आपका मन दुखी होगा, शायद रोना भी आए आपको। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बस अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। इस वक्त आपकी कंडीशन समझ नहीं सकता और शायद मेरा ये कहना गलत हो, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ रोइएगा मत, ज़्यादा उदास मत होइएगा, खुद को अकेला मत समझिएगा। मैं हूँ आपके साथ और हमेशा रहूँगा।
अगर ज्यादा याद आए तो घर पर फोन करके सबसे बात कर लीजिएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और बिना किसी बारे में ज्यादा सोचे आराम कीजिएगा, शायद कल आपको आराम करने का मौका ना मिले। घर पर सबसे बात की है हमने और समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमने संभाल लिया है खुद को, अब नहीं रोएंगे। और हमने जो भी किया है हमारे लिए किया है, और इस हम में आप और मैं दोनों शामिल हैं, इसलिए अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए। हम ठीक हैं, पहली बार अपने परिवार से इतने दूर आए हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम कोशिश करेंगे इस माहौल में खुद को ढालने और खुश रहने की, ताकि आप परेशान ना हो और हमारी उदासी के लिए खुद को जिम्मेदार ना ठहराएं। अहाना का जवाब सुनकर अक्षय के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। पल भर की खामोशी के बाद अहाना ने आगे कहा, आपने खाना खा लिया? नहीं, इंतजार कर रहा था कि आप खा लें तो मैं भी खा लूंगा। अक्षय का जवाब सुनकर पहले तो अहाना चौंक गई, फिर मन में कुछ आया और लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। हम खा लेंगे खाना, आप भी हमारी चिंता छोड़कर खाना खा लीजिए, आराम की जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं आपको भी है। अब खाने ही जा रहा हूँ, आप भी फ्रेश होकर डिनर कीजिए और फिर आराम कीजिए। दोनों ने फोन काटा और अहाना ने फोन को अपने सीने से लगा लिया। किसी के लिए खास होने और उसके द्वारा खुद से ज्यादा परवाह किए जाने का एहसास नया था उसके लिए, जो उसके मन को गुदगुदा गया था। अक्षय से बात करने के बाद मन में बसा वो अकेलापन कहीं दूर निकल गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिसके लिए वो यहाँ अनजानों के बीच आई है वो अपना उसके साथ है। कुछ देर बाद अहाना कपड़े बदलकर फ्रेश होकर बाहर आई, तब लगा जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। काफी हल्का महसूस कर रही थी वो और अब बेहतर लग रहा था उसे। हालांकि हाथों में चूड़ियां, पैरों में पाजेब बिछुए, गले में मंगलसूत्र अब भी मौजूद थे, पर पहले से तो ठीक ही था। अहाना ने खाना खाया, फिर हाथ धोकर बेड पर जाकर पैर फैलाकर बैठ गई, जो अब मुड़े मुड़े दर्द करने लगे थे। जूठी थाली छोड़कर उठना उसे ठीक तो नहीं लगा था, पर इस अनजान जगह पर करती भी तो क्या। कुछ देर बाद जब फलक कमरे में आई, तब तक अहाना बैठ के क्राउन से टेक लगाए सो चुकी थी। फलक उसे देखकर मुस्कुराई, शायद अपना वक्त याद आ गया था उसे। आगे बढ़कर उसने उसे ठीक से लिटाकर ब्लैंकेट से ढक दिया और जूठे बर्तन लेकर कमरे से बाहर चली गई। अक्षय का भी यही हाल था, रात भर जागना और इतनी ट्रैवलिंग, थकान सर पर हावी थी और बेड पर लेटते ही वो नींद की आगोश में समा गया था।
अगली सुबह अहाना की नींद नोटिफिकेशन की आवाज से खुली। नींद अब भी उसके सर पर हावी थी, पर जैसे ही आभास हुआ कि वो अपनी मायके में नहीं ससुराल में है, तो हड़बड़ी में सारी नींद झटकते हुए उठकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। अपनी आंखों को मलते हुए उसने फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर अक्षय का मैसेज चमक रहा था, जो अभी अभी आया था, मतलब वो जाग गया था। ये सोचते हुए अहाना ने मैसेज पर टैप किया। गुड मॉर्निंग मिसेज अहाना अक्षय सहगल। अक्षय का मैसेज पढ़ते ही अहाना के जहन में वो बीती बात ताज़ा हो गई, जब अक्षय ने उसे ऐसे ही संबोधित किया था, पर उसने रिप्लाई में कहा था कि वो अभी तक मिसेज सहगल नहीं बनी है, और आज का दिन है जब वो उसकी अर्धांगिनी बनकर उसके घर में है। अहाना के गुलाब के कोमल पंखुड़ियों से लब अनजाने ही मुस्कुरा उठे। गुड मॉर्निंग, आप इतनी जल्दी उठ गए? अहाना के सवाल पर अक्षय मुस्कुराया, पल भर सोचा, फिर रिप्लाई कर दिया, सुबह सुबह किसी का ख्वाब आया और नींद खुल गई। अच्छा, कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? नहीं, एक ऐसा ख्वाब देखा जो अब हकीकत बनकर बस मुझसे 2 कमरों की दूरी पर मौजूद है। जवाब टाइप करते हुए अक्षय दिलकशी से मुस्कुराया। वहीं अहाना कुछ कंफ्यूज हो गई। चेहरे पर उलझन भरे भाव लिए उसने 2-4 बार इस मैसेज को पढ़ा, फिर अचानक ही दिमाग में कुछ आया और उसके गोरे मुखड़े पर हया की सुर्खी बिखर गई। फिर तो आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पूरा हो जाए वो ख्वाब नहीं रहता। अभी तो ख्वाब ही है, क्योंकि मेरे पास मेरे सामने नहीं है। जब होगा तब इस खूबसूरत हकीकत को जी भरकर महसूस करूंगा, ताकि विश्वास कर सकूं कि वाकई में मेरा ये हसीन ख्वाब सच हो गया है। मतलब आपको विश्वास नहीं कि आपका ख्वाब हकीकत में बदल चुका है? करना तो चाहता हूं, पर विश्वास करना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए। क्यों? अहाना की बौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं और निगाहें बड़ी ही बेसब्री से अक्षय के जवाब का इंतजार करने लगीं, क्योंकि ये जो ख्वाब है, एक वक्त था जब मुझे उसके सच होने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी, और अब जब वो हकीकत में बदल चुका है तो दिल शायद घबरा गया है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। फिर आपका दिल कैसे विश्वास करेगा? जब आप मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने खड़ी होंगी और मैं नज़र भर आपको देख पाऊंगा, तब उसे विश्वास हो जाएगा कि अब आप मेरी हैं। अक्षय ने साफ शब्दों में जवाब दिया, जिसे पढ़कर अहाना के पेट में गुदगुदी सी होने लगी। हम नहाने जा रहे हैं, आप उलझे रहिए अपने ख्वाब और हकीकत के बीच, अहाना ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई टाइप किया और फोन रखकर बैग की ओर बढ़ गई। अक्षय उस फोन को अपने सीने से लगाए मुस्कुरा उठा। क्रमशः